एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। ज्ञान गोष्ठी के इस नए अंक में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्ते। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में कह सकते हैं गोता लगाने वाले हैं जिसने सचमुच ब्रह्मांड के रहस्यों के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए।
बिल्कुल सही कहा। बात हो रही है महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की वो कमाल की किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, यानी समय का संक्षिप्त इतिहास की। आई तो थी 1988 में, लेकिन आप देखिए आज भी इसकी बातें उतनी ही जरूरी लगती हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये उन सवालों से जूझती है जो हम इंसान शायद हमेशा से पूछते आए हैं। ये दुनिया, ये ब्रह्मांड आखिर कहाँ से आया और ये ऐसा क्यों है जैसा ये है,
और इसमें हम कहाँ हैं, हमारा क्या स्थान है?
बिल्कुल। और हॉकिंग का मकसद, वो कहते थे, यही था कि इन भारी भरकम वैज्ञानिक विचारों को, जो अक्सर मुश्किल गणित में लिपटे होते हैं, उनको हम सबके समझने लायक बनाया जाए।
और क्या खूब किया उन्होंने। ये सिर्फ विज्ञान की किताब नहीं है, बल्कि ये तो इंसान के जानने की इच्छा, उसकी जिज्ञासा की कहानी भी है। उन्होंने दिखाया कि बड़े से बड़े वैज्ञानिक रहस्य भी बिना उलझाओ समीकरणों के समझाए जा सकते हैं।
सही, तो चलिए आज इसी ज्ञान यात्रा में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और देखते हैं हॉकिंग हमें ब्रह्मांड के बारे में क्या क्या बताते हैं।
स्टीफन हॉकिंग 1942 से 2018 तक, मतलब ये नाम सुनते ही जहन में एक असाधारण प्रतिभा की तस्वीर आती है।
बिल्कुल, वे अपने दौर के सबसे ब्रिलियंट, आप कह सकते हैं सबसे प्रतिभाशाली सैद्धांतिक भौतिकविदों और ब्रह्मांड विज्ञानियों में से एक थे। उनकी सोच ने वाकई वाकई ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया।
और सोचिए जरा, वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणित के लुकासियन प्रोफेसर थे।
हाँ,
ये वही कुर्सी है जिस पर कभी सर आइजैक न्यूटन बैठा करते थे। कमाल की बात है ना?
कमाल की बात है, एक ही पद पर दो महान दिमाग, गुरुत्वाकर्षण से लेकर ब्लैक होल तक, ब्रह्मांड के नियमों को समझने की कोशिश में लगे रहे। और हॉकिंग की खास दिलचस्पी ब्लैक होल और ब्रह्मांड की उत्पत्ति जैसे विषयों में थी
जी।
और उनकी सबसे बड़ी देन में से एक वो मानी जाती है हॉकिंग रेडिएशन का सिद्धांत।
हाँ, हॉकिंग रेडिएशन,
ये विचार कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते, बल्कि वो बहुत धीरे धीरे एक तरह का विकिरण छोड़ते हैं और आखिरकार वाष्पित हो सकते हैं।
सुनने में ही कितना अजीब लगता है,
है ना? पर यह आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत और क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब दो बिल्कुल अलग लगने वाले सिद्धांतों को जोड़ने की दिशा में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम था।
तो क्या बात उन्हें इस किताब को लिखने के लिए इतना खास बनाती है? मतलब क्यों उन्हीं की किताब इतनी अहम है?
देखिए, पहली बात तो है कि वो खुद उन सिद्धांतों के बनाने वालों में से थे जिनके बारे में वो लिख रहे थे।
अच्छा, वो सिर्फ रिपोर्ट नहीं कर रहे थे?
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ रिपोर्टर नहीं बल्कि खोजकर्ता थे। और दूसरी बात, उनकी वो कमाल की क्षमता, मुश्किल से मुश्किल वैज्ञानिक आइडिया को एकदम आसान भाषा में और रोजमर्रा की चीजों के उदाहरणों से समझा देना।
हाँ, जैसे वो रबर की चादर वाली मिसाल देते हैं स्पेस टाइम समझाने के लिए।
एग्जैक्टली। और इन सबसे ऊपर उनका अपना हौसला, उनकी हिम्मत,
वो तो है ही।
सोचिए, महज 21 साल की उम्र में उन्हें ALS जैसी गंभीर बीमारी का पता चला। डॉक्टरों ने कहा कि भाई कुछ ही साल बचे हैं, लेकिन देखिए, शरीर व्हीलचेयर तक सिमट गया, आवाज कंप्यूटर के जरिए आती थी, पर उनका दिमाग, वो तो ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों की सैर करता रहा।
सच में
ये जो विरोधाभास है ना, उनकी शारीरिक सीमाओं और उनकी असीम दिमागी उड़ान के बीच, यही उन्हें इतना असाधारण बनाता है। और उनका मानना था कि विज्ञान पर सबका हक है।
हाँ, ये बात बहुत जरूरी है।
और यही सोच मुझे लगता है इस किताब की जान है।
तो फिर ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम आखिर है किस बारे में, अगर एकदम सीधे शब्दों में कहें?
सीधे शब्दों में तो ये आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान की एक गाइडबुक है, लेकिन ऐसी गाइडबुक जिसमें कोई मुश्किल गणित नहीं है।
अच्छा।
हॉकिंग चाहते थे कि कोई भी जिसे थोड़ी भी दिलचस्पी हो, चाहे उसकी साइंस की बैकग्राउंड हो या ना हो, वो ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी बातें समझ सके। कहते हैं उन्हें सलाह दी गई थी कि किताब में हर एक समीकरण पाठकों की संख्या आधी कर देगा।
हा, 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 हा।
तो उन्होंने सिर्फ एक ही समीकरण इस्तेमाल किया, आइंस्टाइन का मशहूर E=MC².
क्या बात है।
हाँ, और ये किताब हमें एक तरह की दिमागी सैर पर ले जाती है। शुरुआत होती है पुराने जमाने की यूनानियों से,
अरस्तु, टॉलमी वगैरह।
हाँ, जो मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। फिर हम कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन जैसे क्रांतिकारियों से मिलते हैं जिन्होंने बताया कि नहीं भाई, सूरज केंद्र में है और चीजें गुरुत्वाकर्षण के नियमों से चलती हैं। और फिर कहानी पहुंचती है 20वीं सदी की दो बड़ी क्रांतियों तक, आइंस्टाइन का सापेक्षता सिद्धांत जिसने स्पेस और टाइम की हमारी पूरी समझ बदल दी,
पूरी तरह से,
और क्वांटम मैकेनिक्स की वो अजीब गरीब दुनिया जो बहुत ही छोटे लेवल पे काम करती है।
और किन बड़े सवालों को ये किताब छूती है? अरे ये तो बड़े गहरे सवाल है, स्पेस और टाइम का असली स्वभाव क्या है?
हाँ, क्या ये स्थिर है या बदलता रहता है? पता चलता है कि ये कोई फिक्स स्टेज नहीं बल्कि एक लचीला स्पेस टाइम है।
और ब्रह्मांड फैल क्यों रहा है?
इसका नतीजा क्या है, यानी बिग बैंग सिद्धांत?
कि सब कुछ एक महाविस्फोट से शुरू हुआ।
फिर वो ब्लैक होल का रहस्य क्या है, ये चीजें जिनसे रोशनी भी बाहर नहीं आ सकती।
और हॉकिंग का वो चौंकाने वाला आइडिया कि ये पूरी तरह काले नहीं है।
और सिर्फ इतना ही नहीं, समय हमेशा आगे ही क्यों बढ़ता है, पीछे क्यों नहीं?
हाँ, समय का तीर।
बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भौतिकी के सारे नियमों को, मतलब गुरुत्वाकर्षण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर फोर्सेस, सबको एक ही सिद्धांत में पिरोया जा सकता है?
वो थियोरी ऑफ एवरीथिंग, हर चीज का सिद्धांत।
हाँ, ये तो जैसे भौतिकी का सबसे बड़ा सपना है।
सही कहा। तो किताब का मूल संदेश यही लगता है कि ये ब्रह्मांड भले ही कितना भी अजीब लगे, ये कुछ तयशुदा भौतिक नियमों पर चलता है जिन्हें हम समझ सकते हैं।
बिल्कुल। और शायद हम उन नियमों को पूरी तरह समझने के बहुत करीब हैं। हॉकिंग मानते थे कि ब्रह्मांड को समझना सिर्फ वैज्ञानिकों का काम
नहीं
बल्कि हर सोचने वाले इंसान का हक है, और ये किताब उसी हक को पूरा करने की एक कोशिश है।
तो चलिए अब किताब के कुछ खास हिस्सों या अध्यायों पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। पहला अध्याय, ब्रह्मांड की हमारी तस्वीर, यहां से शुरू करें।
हाँ, यहाँ हॉकिंग हमें इतिहास में ले जाते हैं। अरस्तु और टॉलेमी सोचते थे कि पृथ्वी बीच में है और सब कुछ, सूरज, चांद, तारे, सब उसके चक्कर लगा रहे हैं।
और सदियों तक लोग यही मानते रहे।
हाँ बिल्कुल। फिर आए कॉपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन, इन्होंने हिम्मत दिखाई और कहा, नहीं, सूरज केंद्र में है और गुरुत्वाकर्षण का नियम सब कुछ चला रहा है। यहीं पर हॉकिंग वो मजेदार कहानी सुनाते हैं, टर्टल्स ऑल द वे डाउन वाली।
हाँ हाँ, कि दुनिया किस पर टिकी है? एक कछुए पर। वो कछुआ किस पर?
दूसरे कछुए पर।
और ये सिलसिला चलता ही जाता है।
हाँ,
और इस कहानी से वो क्या बताना चाहते हैं?
वो ये बताना चाहते हैं कि हमें एक ऐसे सिद्धांत की जरूरत है जो खुद अपने आप में पूरा हो, जिसे टिकने के लिए किसी और चीज या अनंत कछुओं की जरूरत ना पड़े। एक आत्मनिर्भर व्याख्या।
समझ गई, बिल्कुल। फिर आता है अध्याय दो, अंतरिक्ष और समय। न्यूटन मानते थे कि स्पेस और टाइम एकदम फिक्स है, मतलब सबके लिए एक जैसे, घड़ी सबके लिए एक ही रफ्तार से चलती है।
हाँ, निरपेक्ष, एब्सोल्यूट। लेकिन आइंस्टाइन ने आकर सब कुछ बदल दिया। पहले स्पेशल रिलेटिविटी में बताया कि नहीं जी, स्पेस और टाइम देखने वाले की गति पर निर्भर करते हैं।
मतलब
अगर कोई बहुत तेज चल रहा हो तो उसके लिए समय धीरे बीतेगा।
क्या, ये सोचना ही कितना अजीब है
सच में। और फिर आए जनरल रिलेटिविटी, इसने तो गुरुत्वाकर्षण की पूरी कहानी ही बदल दी।
कैसे?
आइंस्टाइन ने कहा कि गुरुत्वाकर्षण कोई खिंचाव वाला बल नहीं है जैसे न्यूटन सोचते थे, बल्कि स्पेस टाइम के ताने बाने में भारी चीजों जैसे सूरज के रखने से जो झुकाव या मोड़ पैदा होता है, कर्वेचर, वही है।
अच्छा, जैसे वो रबर की चादर वाला उदाहरण।
बिल्कुल, जैसे चादर पर भारी गेंद रखने से वो झुक जाती है और पास से गुजरने वाली छोटी कंचे उस झुकाव के कारण गेंद की तरफ मुड़ जाते हैं, वैसे ही ग्रह सूरज के चारों ओर स्पेस टाइम के झुकाव के कारण घूमते हैं।
वाह, क्या कमाल की सोच है वाकई। अब अध्याय 3, विस्तारित होता ब्रह्मांड। यहाँ एडविन हबल की खोज का जिक्र है ना?
हाँ, हबल ने देखा कि दूर की आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, और जो जितनी ज्यादा दूर है वो उतनी ही तेजी से दूर भाग रही है।
और ये पहला पक्का सबूत था कि ब्रह्मांड फैल रहा है।
बिल्कुल, पहला ठोस सबूत। और अगर सब कुछ आज फैल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ?
मतलब कि अतीत ने सब कुछ एक दूसरे के बहुत करीब रहा होगा, शायद एक ही बिंदु पर।
एग्जैक्टली, यहीं से बिग बैंग सिद्धांत का आइडिया आता है
कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक बेहद गर्म और घने बिंदु से हुई थी।
फिर अध्याय 4, अनिश्चितता का सिद्धांत, हमें क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में ले जाता है, और ये दुनिया तो बड़े स्केल की दुनिया से बहुत अलग है।
बहुत ज्यादा अलग। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहता है कि आप एक ही समय में किसी कण की एकदम सही स्थिति और एकदम सही रफ्तार या मोमेंटम कहें, दोनों एक साथ नहीं जान सकते।
और ये हमारी नापने की कमी नहीं है। नहीं, ये प्रकृति का ही नियम है। इसने विज्ञान में संभावनाओं और कह सकते हैं अनिश्चितता को ला दिया। आइंस्टाइन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनका वो मशहूर कहना था, भगवान पासे नहीं खेलते।
हाँ, सुना है।
पर क्वांटम मैकेनिक्स आज तक हर कसौटी पर खरी उतरी है।
तो इसका मतलब हुआ कि छोटे लेवल पर चीजें थोड़ी थोड़ी धुंधली, थोड़ी अनिश्चित होती हैं।
एक तरह से हाँ, एक मौलिक अनिश्चितता है। इसके बाद अध्याय 5 मूल कण और प्रकृति के बल में हॉकिंग बताते हैं कि पदार्थ किन चीजों से बना है, क्वार्क
जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनाते हैं,
हाँ, और लेप्टॉन जैसे इलेक्ट्रॉन, और इन्हें कौन से चार मूल बल कंट्रोल करते हैं, गुरुत्वाकर्षण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कमजोर न्यूक्लियर और मजबूत न्यूक्लियर बल।
और भौतिकी का एक बड़ा सपना है इन चारों बलों को एक ही सिद्धांत में मिला देना।
बिल्कुल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और कमजोर बल को मिलाकर इलेक्ट्रो वीक बल का सिद्धांत बन चुका है, इसमें सफलता मिली है।
अच्छा,
लेकिन गुरुत्वाकर्षण को बाकी तीन के साथ जोड़ना वो अभी भी सबसे बड़ी चुनौती है, और यहीं से कहानी और दिलचस्प होती है, खासकर अध्याय 6 और 7 में।
ब्लैक होल और ब्लैक होल इतने काले नहीं हैं, ये तो हॉकिंग के अपने काम का केंद्र है। ब्लैक होल नाम सुनते ही रहस्य और थोड़ा डर सा लगता है, ये बनते कैसे हैं असल में?
जब कोई बहुत बड़ा तारा, सूरज से कई गुना बड़ा, उसका ईंधन खत्म हो जाता है तो वो अपने ही वजन से अंदर की तरफ ढह जाता है, कोलैप्स कर जाता है और बन जाता है ब्लैक होल। एक ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि रोशनी तक बाहर नहीं निकल सकती।
बाप रे, और इसकी एक सीमा होती है, इवेंट होराइजन।
हाँ, इवेंट होराइजन वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जिसे पार करने के बाद वापसी नामुमकिन है, समझ लीजिए एक तरफा टिकट।
लेकिन फिर हॉकिंग ने कहा कि ये इतने काले नहीं हैं। ये कैसे हो सकता है अगर रोशनी भी बाहर नहीं आ सकती तो?
यहीं पर क्वांटम मैकेनिक्स का जादू आता है। हॉकिंग ने दिखाया कि इवेंट होराइजन के ठीक पास क्वांटम प्रभावों के कारण ब्लैक होल असल में बहुत धीमे धीमे कणों का उत्सर्जन करते हैं।
अच्छा,
हाँ, जैसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं, इसका मतलब है कि वो धीरे धीरे अपना द्रव्यमान खोते हैं और अरबों खरबों साल में पूरी तरह वाष्पित हो सकते हैं।
क्या बात है, मतलब ब्लैक होल भी हमेशा के लिए नहीं है। ये तो रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स का जबरदस्त संगम हो गया।
बिल्कुल, पहला महत्वपूर्ण परिणाम था ये दोनों थ्योरीज को जोड़ने वाला। लेकिन इससे वो सवाल भी उठता है कि जो चीजें ब्लैक होल में गिरती हैं उनकी जानकारी का क्या होता है, इन्फॉर्मेशन का, क्या वो हमेशा के लिए खो जाती हैं?
हाँ, ये सूचना विरोधाभास या इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स।
बिल्कुल, ये भौतिकी का एक बड़ा अनसुलझा सवाल है आज भी। इसके बाद अध्याय 8 ब्रह्मांड की उत्पत्ति और भाग्य में बिग बैंग के बाद की कहानी है।
कैसे ब्रह्मांड विकसित हुआ?
हाँ, कैसे शुरुआती पलों में इन्फ्लेशन यानी बहुत तेज फैलाव हुआ जिसने ब्रह्मांड को आज जैसा समतल और एक जैसा बनाया, और भविष्य क्या है, क्या ब्रह्मांड हमेशा फैलता रहेगा,
जिसे बिग फ्रीज कहते हैं।
हाँ, या फिर वापस सिकुड़ जाएगा, बिग क्रंच।
और ये किस बात पर निर्भर करता है?
ये निर्भर करता है कि ब्रह्मांड में कुल कितना पदार्थ और ऊर्जा है, उसकी डेंसिटी पर। यहीं पर हॉकिंग और जेम्स हार्टल का वो नो बाउंड्री प्रपोजल भी आता है।
हाँ, ये क्या है?
ये एक बहुत गहरा विचार है कि शायद ब्रह्मांड का कोई किनारा या कोई तयशुदा शुरुआत या अंत है ही नहीं। जैसे पृथ्वी की सतह गोल है, उसका कोई किनारा नहीं होता, आप चलते जाइए वहीं पहुंच जाएंगे।
अरे वाह, ये तो दिमाग घुमा देने वाला आइडिया है। मतलब कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं।
कुछ वैसा ही, बहुत जटिल आइडिया है। और फिर अध्याय 9 समय का तीर, ये सवाल कि समय हमेशा आगे ही क्यों बढ़ता है, हम बीता हुआ कल याद रखते हैं, आने वाला कल क्यों नहीं?
हाँ, ये बड़ा फंडामेंटल सवाल है।
हॉकिंग यहां तीन तरह के तीरों की बात करते हैं। एक है थर्मोडायनामिक तीर,
मतलब एंट्रोपी, चीजों में बिखराव या अव्यवस्था का हमेशा बढ़ना, जैसे कमरा खुद गंदा होता है, साफ नहीं।
बिल्कुल। दूसरा है मनोवैज्ञानिक तीर, हम अतीत याद रखते हैं, भविष्य नहीं। और तीसरा ब्रह्मांडीय तीर, कि ब्रह्मांड फैल रहा है, सिकुड़ नहीं रहा।
और हॉकिंग कहते हैं कि ये तीनों तीर एक ही दिशा में हैं।
हाँ, उनका तर्क है कि ये तीनों तीर एक ही दिशा में इसलिए हैं क्योंकि ब्रह्मांड की शुरुआत बहुत ही व्यवस्थित, मतलब बहुत कम एंट्रोपी वाली स्थिति में हुई थी।
अच्छा, ये कनेक्शन है, समझ गई। अच्छा, अध्याय 10 वर्म होल और टाइम ट्रैवल, ये तो थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लगता है। क्या स्पेस टाइम में शॉर्टकट यानी वर्म होल मुमकिन है?
हाँ, ये अध्याय थोड़ा अंदाजा लगाने वाला है, स्पेक्युलेटिव है। आइंस्टीन की थ्योरी जनरल रिलेटिविटी सैद्धांतिक रूप से इसकी इजाजत देती है, वर्म होल की संभावना है।
और टाइम ट्रैवल, क्या हम समय में आगे पीछे जा सकते?
थ्योरी में तो हाँ, पर व्यवहारिक रूप में ये बेहद मुश्किल लगता है। और फिर वो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसे विरोधाभास हैं।
हाँ, कि अगर आप अतीत में जाकर अपने दादाजी से मिलने से पहले ही उन्हें रोक दें तो आपका क्या होगा, आप तो होंगे ही नहीं।
एग्जैक्टली हॉकिंग मजाक में कहते हैं कि शायद प्रकृति के नियम हमें ऐसी गड़बड़ करने से रोकते हैं जिसे वो क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर कहते हैं।
अच्छा है, इतिहास सुरक्षित रहेगा। फिर अध्याय 11 भौतिकी का एकीकरण हमें वापस मुख्य लक्ष्य पर लाता है, वो थियरी ऑफ एवरीथिंग।
हाँ, गुरुत्वाकर्षण को बाकी बलों से कैसे जोड़ा जाए, यहाँ स्ट्रिंग थ्योरी का जिक्र आता है जो आजकल एक प्रमुख उम्मीदवार मानी जाती है।
स्ट्रिंग थ्योरी ये क्या कहती है?
ये कहती है कि मूल कण जैसे इलेक्ट्रॉन या क्वार्क वो बिंदु जैसे नहीं है बल्कि बहुत छोटे एक आयामी कंपन करते हुए धागे या स्ट्रिंग जैसे हैं।
अच्छा,
और उनके कंपन के अलग अलग तरीके ही हमें अलग अलग कणों के तरह दिखते हैं, जैसे वायलिन के तार के अलग अलग कंपन से अलग अलग सुर निकलते हैं।
हाँ, दिलचस्प है, लेकिन इसके लिए
हमें सामान्य 3 स्पेस + 1 टाइम डायमेंशन के अलावा और भी छिपे हुए आयामों की जरूरत पड़ती है, शायद 10 या 11 कुल आयाम।
और आयाम? ये तो और भी जटिल हो गया। क्या इस थ्योरी को टेस्ट किया जा सकता है?
यही इसकी एक बड़ी चुनौती है। ये सिद्धांत गणितीय रूप से बहुत सुंदर, बहुत एलिगेंट है, पर इसे सीधे प्रयोगों से साबित करना अभी बहुत मुश्किल है।
और आखिर में अध्याय 12 निष्कर्ष में हॉकिंग सोचते हैं कि अगर हमें वो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग मिल गई तो इसका मतलब क्या होगा? क्या हम ईश्वर के मन को जान पाएंगे?
हाँ, ये उनकी बहुत मशहूर लाइन है, पर इसका मतलब समझना जरूरी है।
क्या मतलब है इसका? कोई धार्मिक मतलब तो नहीं?
नहीं, एक रूपक है, मेटाफर है। मतलब क्या हम प्रकृति के सबसे बुनियादी नियमों को समझ पाएंगे कि ये ब्रह्मांड क्यों है और ये ऐसा क्यों है जैसा ये है? हॉकिंग जोर देते हैं कि ऐसी खोज विज्ञान को और लोकतांत्रिक बनाएगी, आम लोगों को भी इन बड़े सवालों पर सोचने और बहस करने का मौका मिलेगा।
और ये किताब उसी दिशा में एक कोशिश है।
बिल्कुल।
इस पूरी चर्चा से, इस किताब से कई बड़े संदेश या थीम्स उभर कर आते हैं। पहला तो मेरे लिए यही है, भौतिक नियमों की एकता।
हाँ,
ये ब्रह्मांड चाहे कितना भी बड़ा और अजीब लगे, ऐसा लगता है कि ये कुछ सरल सार्वभौमिक नियमों से बंधा है। नियम यहाँ पृथ्वी पर जैसे काम करते हैं, और वो प्रकाश वर्ष दूर भी शायद वैसी ही करते हैं।
बिल्कुल सही। और दूसरा है इंसानी तर्क की ताकत, हमारी सोचने समझने विश्लेषण करने की क्षमता। वो हमें ब्रह्मांड के इतने गहरे रहस्य खोलने में मदद करती है। हॉकिंग का खुद का जीवन इसका सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ब्रह्मांड की यात्रा की।
सच में?
तीसरा, और मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण, ज्ञान का लोकतंत्रीकरण। हॉकिंग का पक्का यकीन था कि विज्ञान सिर्फ कुछ एक्सपर्ट्स की बपौती नहीं होनी चाहिए। ये किताब लिखकर, मुश्किल चीजों को इतना आसान बनाकर उन्होंने यही साबित किया। भारत जैसे देश में जहां हमें वैज्ञानिक सोच को और बढ़ावा देने की जरूरत है, ये संदेश बहुत बहुत मायने रखता है।
बिल्कुल सहमत हूँ।
चौथा संदेश है वैज्ञानिक सत्य का अस्थायी होना।
अच्छा,
मतलब विज्ञान में कोई भी थ्योरी पत्थर की लकीर नहीं होती।
हाँ, ये जरूरी है समझना।
नई सबूत मिलने पर वो बदलती है, बेहतर होती है। न्यूटन के बाद आइंस्टीन आए, शायद आइंस्टीन के बाद कोई और आएगा। यही विज्ञान की खूबसूरती है। ये हट धर्मी नहीं है, ये सीखने के लिए हमेशा तैयार है।
पांचवां, अलग अलग पैमानों का जुड़ाव। बहुत छोटी चीजें जैसे क्वांटम लेवल की घटनाएं, वो बहुत बड़ी चीजों जैसे आकाश गंगाओं का बनना को प्रभावित करती हैं।
हाँ, सब कुछ जुड़ा हुआ है। बिग बैंग के पहले कुछ पलों में जो हुआ उसने आज के ब्रह्मांड का पूरा ढांचा तय कर दिया। इट्स ऑल कनेक्टेड।
और छठा, शायद सबसे गहरा, समझने से मिलने वाला अर्थ। हो सकता है कि इस विशाल ब्रह्मांड को समझने की हमारी ये क्षमता ही हमें खास बनाती हो, हमारे होने को एक मतलब देती हो। ये जानना कि हम कहाँ से आए, ये दुनिया कैसे काम करती है, ये अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है।
बिल्कुल, ये जिज्ञासा ही शायद इंसान होने का एक जरूरी हिस्सा है।
किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां भी हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं ना, जो सोचने पे मजबूर करती हैं।
हाँ, कई हैं। जैसे वो कहते हैं, हम एक साधारण तारे के मामूली ग्रह पर बंदरों की उन्नत नस्ल मात्र हैं, लेकिन हम ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। ये हमें बहुत खास बनाता है।
क्या कमाल का संतुलन है इसमें। एक तरफ हमारी ब्रह्मांडीय हैसियत कितनी छोटी है, और दूसरी तरफ हमारी समझ की ताकत कितनी बड़ी।
बिल्कुल, ये हमें विनम्र भी बनाता है और हमारी क्षमता का एहसास भी कराता है।
और वो निष्कर्ष वाली लाइन, अगर हमें इसका जवाब मिल जाए कि ब्रह्मांड क्यों मौजूद है, तो ये मानव तर्क की अंतिम विजय होगी, क्योंकि तब हम ईश्वर के मन को जान पाएंगे।
हाँ, जैसा हमने पहले कहा, ये किसी धार्मिक बात से ज्यादा प्रकृति के अंतिम नियमों को, फंडामेंटल लॉज को समझने की वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा है। द अल्टीमेट गोल ऑफ साइंस।
एक और गहरी बात लगती है मुझे, विज्ञान का पूरा इतिहास धीरे धीरे ये एहसास रहा है कि घटनाएं मनमाने ढंग से नहीं होती, बल्कि वो एक निश्चित अंतर्निहित व्यवस्था को दर्शाती हैं।
सही, ये इस विश्वास को दिखाता है कि ब्रह्मांड तर्कसंगत है, रैशनल है, उसमें एक पैटर्न है जिसे हम खोज सकते हैं। इसी विश्वास पर तो पूरा विज्ञान टिका है। अगर सब कुछ रैंडम होता तो विज्ञान संभव ही नहीं होता।
और हॉकिंग का अपना लक्ष्य कितना सीधा और कितना बड़ा है। मेरा लक्ष्य सरल है, ये ब्रह्मांड की पूरी समझ है। ये जैसा है वैसा क्यों है और ये अस्तित्व में ही क्यों है।
एक वाक्य में इतनी बड़ी खोज की प्यास, उनकी असीम जिज्ञासा दिखती है इसमें।
और एक छोटा सा पर बहुत काम का विचार भी है, बुद्धिमत्ता बदलाव के अनुकूल ढलने की क्षमता है।
हाँ, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडैप्ट टू चेंज। ये सिर्फ जानने की बात नहीं, बल्कि नई जानकारी के आधार पर अपनी सोच को, अपने नजरिए को बदलने की क्षमता है। जब हम ब्रह्मांड के बारे में कुछ नया सीखते हैं तो हमें अपनी समझ को भी अपडेट करना पड़ता है, अडैप्ट करना पड़ता है।
अच्छा, अब ये सब जान लिया, बड़े बड़े आइडियाज हैं, लेकिन क्या इन विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी कोई लेना देना है? क्या इससे हमें कोई फायदा हो सकता है?
देखिए, सीधे तौर पर शायद ये ना बताए कि शाम को खाने में क्या बनाना है।
हाँ।
लेकिन हाँ, ये हमारे सोचने के तरीके पर गहरा असर डाल सकती हैं। सबसे पहले तो ये वैज्ञानिक सोच और आलोचनात्मक नजरिया, क्रिटिकल थिंकिंग, विकसित करने में मदद करती है।
कैसे?
हम सीखते हैं कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने से पहले सबूत देखें, सवाल पूछें। आजकल की दुनिया में जहां इतनी गलत जानकारी, मिस इन्फॉर्मेशन फैली है, ये हुनर तो बहुत जरूरी है।
हाँ, ये तो है, और ये जिज्ञासा और हमेशा सीखते रहने की भावना जगाती है।
बिल्कुल, ये हमें बड़े सवाल पूछने के लिए उकसाती है, ये याद दिलाती है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। और हॉकिंग जिस तरह मुश्किल चीजों को आसान उदाहरणों से समझाते हैं, वो तरीका हम अपनी बातचीत में किसी को कुछ समझाने में इस्तेमाल कर सकते हैं।
और ब्रह्मांड के इतने बड़े पैमाने के बारे में सोचने से क्या उससे भी कुछ मिलता है?
हाँ, मुझे लगता है उससे हमें एक नया नजरिया, एक पर्सपेक्टिव और एक तरह का हौसला भी मिल सकता है। जब हम अरबों सालों और खरबों आकाशगंगाओं के बारे में सोचते हैं तो अपनी छोटी मोटी परेशानियां उतनी बड़ी नहीं लगती।
थोड़ा पर्सपेक्टिव मिलता है।
हाँ, और हॉकिंग का अपना जीवन, वो खुद हिम्मत और कभी हार ना मानने की एक मिसाल है।
दृढ़ता की,
उनकी बात कहने की कला, कम्युनिकेशन स्किल, वो भी सीखने लायक है। बिल्कुल, कैसे मुश्किल विषयों को भी दिलचस्प और समझने लायक बनाया जाए, ये स्किल तो हर किसी के काम आ सकती है, चाहे वो टीचर हो, बिजनेसमैन हो, या बस घर पर बच्चों से बात कर रहा हो।
और हाँ, ये हमारे निजी जीवन दर्शन, हमारी पर्सनल फिलॉसफी को भी छू सकती है।
कैसे?
ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है, समय क्या है, अस्तित्व का क्या मतलब है? ये किताब हमें इन बड़े सवालों पर सोचने के लिए नए औजार, नए फ्रेमवर्क्स देती है।
सही कहा, और निश्चित रूप से ये युवा मन को विज्ञान और तकनीक की तरफ खींच सकती है।
हाँ, इंस्पायर कर सकती है।
बिल्कुल, ये दिखाती है कि साइंस सिर्फ लैब का काम नहीं, बल्कि इंसान के सबसे रोमांचक, सबसे गहरे सवालों का जवाब खोजने का एक सफर है।
तो आखिर में इस पूरी चर्चा से हम क्या लेकर जा सकते हैं? सबसे बड़ा टेकअवे क्या है?
ह्यूमन रीजन उसे समझ सकता है। ये हमें यकीन दिलाता है कि हम मुश्किल से मुश्किल पहेलियां सुलझा सकते हैं। और हॉकिंग का जीवन, वो हमें हिम्मत देता है जानने की, हिम्मत, और ये मानने की भी हिम्मत कि हम सब कुछ नहीं जानते, पर कोशिश करना जरूरी है, उस अनिश्चितता को गले लगाना जरूरी है।
और मेरे लिए शायद ये कि ज्ञान की ये खोज, ये सफर ही अपने आप में खूबसूरत है। मंजिल मिले या ना मिले, ये सवाल पूछना, ये समझने की कोशिश करना, यही इंसान होने का एक अहम हिस्सा है। हॉकिंग का सपना था कि विज्ञान सबके लिए हो, और ये किताब उसी सपने की तरफ एक बड़ा कदम है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सब इस रोमांचक दिमागी सफर में शामिल हो सकते हैं।
बिल्कुल,
और ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि अगर हम इतने बड़े ब्रह्मांडीय रहस्यों को समझने की क्षमता रखते हैं, तो क्या हम अपनी धरती की चुनौतियों, जैसे क्लाइमेट चेंज या आपसी मतभेद, इनका हल नहीं ढूंढ सकते? शायद हमें बस वही वैज्ञानिक नजरिया और सहयोग चाहिए।
बहुत अच्छी बात कही, शायद वही पर्सपेक्टिव चाहिए।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।